भारत को त्योहारों का भी देश कहा जाता है। विविधताओं से भरे इस देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार और भारतीय संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। ये त्योहार जहां हमको धर्म से जोड़े रखते हैं, वहीं समाज में परस्पर सहयोग, सामंजस्य और एकता भी बनाए रखते हैं। मुख्यतः हमारे देश के त्योहारों में राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इत्यादि। इसके अलावा कुछ त्योहार धार्मिक होते हैं जो एक विशेष धर्म से जुड़े होते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस इत्यादि। इसके अलावा कुछ त्योहार मौसम और कृषि कार्य पर आधारित होते हैं, जो जब मौसम बदलता है और फसल कटती है तब मनाए जाते हैं। इन सब त्योहारों में एक विशेष बात है, भारत में त्योहार कोई भी हो, मनाते सभी लोग मिलजुल कर हैं। भारतीय त्योहार देश की संस्कृति का प्रतिबिंब है। त्योहारों पर आयोजित समारोह हमारे देश की संस्कृति और परंपरा से परिचित कराते हैं। प्रत्येक त्योहार का एक धार्मिक अर्थ और उससे जुड़ी परंपरा है। त्योहार के समय नई पीढ़ी को हमारे देश की सांस्कृतिक जड़ों के बारे में समझने और उन्हें इससे जुड़ने में मदद करने का एक अवसर है। जनवरी 13 और 14 को भारत में फिर से एक बार त्योहारों की झड़ी सी लगने वाली है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अन्य प्रदेशों में लोहड़ी, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जगह पर मकर संक्रांति और दक्षिण में पोंगल का पर्व मनाया जाएगा। जाहिर है ऐसे में पूरा देश फिर त्योहारों के उत्सव में भाग ले रहा होगा। भारत के विभिन्न राज्यों से इन त्योहारों के बारे में, इनको क्यों मनाते हैं, इनमें क्या क्या उत्सव होता है, इसको जानने की कोशिश की गई। इसी क्रम में बाराबंकी के पंडित श्रीनिवास त्रिपाठी ने SBS से मकर संक्रांति के पौराणिक महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा की।
असल में इसकी धार्मिक मान्यताएं भी हैं मकर संक्रांति। हम आपको ले चलते हैं जो धार्मिक पुराणों के अनुसार बताया गया है, वो ये है कि सूर्य के उत्तरायण में जाने पर, मकर राशि से सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति मनाया जाता है। स्कंद पुराण में क्या है कि स्कंद पुराण में भगवान शिव और नारायण एक ही दिन एक ही पल गंगा में स्नान करने के लिए आए थे, और हुआ क्या कि जब ये स्नान कर रहे थे तो माता लक्ष्मी उनको झांक रही थी। भगवान नारायण और शिव को गुप्त रूप से ये माता लक्ष्मी झांक रही थी। भगवान विष्णु ने तिरछी नजर से उनको देख लिया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, तो भगवान शिव ने कहा, मैंने देख लिया है और महारानी लक्ष्मी हमें झांक रही है, हमने उनको वर दे दिया। ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि पुराणों में वर्णित है, इस वजह से हम आपको इसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा, भगवान शिव ने कहा कि हमने लक्ष्मी का नाम गुप्त लक्ष्मी रख दिया है और उनको ये आशीर्वचन दे दिया है। मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव भगवान के एक साथ दर्शन माता लक्ष्मी ने किया, तब से इस मकर संक्रांति को पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से मनाया जाता है। इसके दो कारण है। अच्छा, होता क्या है कि इस दिन जो गुप्त लक्ष्मी है इनको ये बताया जाता है कि गुप्त रूप से इनका दान करना चाहिए। तो होता नहीं क्या, जो लड्डू बनाए जाते हैं उसमें होता क्या है कि कुछ सिक्के डाल दिए जाते हैं, ऐसा गांव में लोक मान्यताएं हैं। पहले तो पुरातन संस्कृति में ऐसा अक्सर हुआ करता था, अब कुछ जगहों पर ऐसा होता है। दूसरा एक और चीज है कि इसमें यह बताया जाता है कि आप 14 तरह की चीजों को दान कीजिए, उसके पीछे एक अग्नि पुराण है। लोगों को नहीं मालूम है इन चीजों ये चीजें, क्योंकि आजकल पुराण और धर्म संस्कृति के प्रति लोगों का जो आग्रह होना चाहिए वो आग्रह है नहीं, ना इस तरह की चीजें लोग एक दूसरे को बताते हैं। तो इसके पीछे भी एक पौराणिक मान्यता है, वो ये है कि जब ये क्या कहते हैं नारद जी जो है वो भगवान शिव के पास गए, नारद जी भगवान शिव के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं इंद्र के पास जाता हूँ तो द्वारपाल मिल जाते हैं, शिव के पास आपके पास आता हूँ तो रास्ते में द्वारपाल मिल जाते हैं। इस तरह अनेक देवी देवताओं के पास जब हम जाते हैं तो बीच में द्वारपाल मिल जाते हैं जो रुकावट बनते हैं मिलने के लिए। अब ऐसा क्या करें हम कि हमको जो है वो सीधे प्रवेश मिल जाए। तो देवर्षि नारद की बात सुन करके भगवान शिव ने कहा कि देखिए नारद जी, उन्होंने नारद ने पूछा कि ऐसा हम क्या करें कि हमको बीच में किसी से मिलना ना पड़े। तो उन्होंने बताया, भगवान शिव ने ये बताया, कहा सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश कर रहा हो और उत्तरायण में जाए आप उसी पल जो है 14 लोगों को भगवान के नाम का दान करिए, मतलब 14 जीव ऐसे हो जिनके नाम का दान आप उनको कर लीजिए, तब आपको सब जगह जो है बिना किसी रुकावट के भगवान से मिलने का समय मिल जाया करेगा और आप सीधे जाकर के उनसे मिल सकते हैं। तो ये जो संस्कृत रही, जो ये अग्नि पुराण में वर्णित है, उसके आधार पर नारद जी ने जो है 14 जीवों को, किसी को कृष्ण का, किसी को नारायण का, किसी को, इस तरह से उन्होंने दान, मौखिक दान, भगवान श्री राम के नाम का ये दान उन्होंने कर दिया। और उसी मान्यताओं को रख करके अब आम आदमी क्या कर सकता है, संसार के लोग तो दान जो करेंगे सबसे बढ़िया दान तो अन्न का है, तो उसी के बाद से लोगों ने अन्न का दान करना शुरू कर दिया, ऐसा मानना है। अच्छा, एक संस्कृत में तमाम, क्योंकि हमारी संस्कृतियां ही ऐसी है, संस्कृति ही ऐसी है कि अलग 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 तरीके से लोगों का इस मकर संक्रांति को मनाने का एक तरीका है। एक श्लोक है, माघे माघे महादेवा यो दास्यति घृत कम्बलम समुक्त्वा साकलाम भोजन अन्ते मोक्षाम प्राप्ति। इसका अर्थ ही यही है कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कंबल और शुद्ध घी दान के रूप में देता है, वह व्यक्ति अपने जीवन मरण के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अच्छा, लोग जो ज्योतिषाचार्य है वो ये बोलते हैं कि जिस सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि मकर संक्रांति के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर गुड़ घी नमक तिल के अतिरिक्त काली उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके खाई जाती है। इसका मूल कारण ये है क्योंकि इस दिन जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, जैसे किसी के ऊपर शनि का या राहु का दोष है, तो वो दोष भी खत्म हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। असल में इस दिन होता क्या कि इस दिन धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है, मौसम बदलता है और दिन बड़ा होने लगता है। हमने बताया ना कि मकर संक्रांति दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उड़द की दाल को शनि देव से संबंधित माना जाता है। इस दिन उड़द दाल खाने से सूर्य देव प्रसन्न भी होते हैं, साथ ही शनि की कृपा होती है। अच्छा, होता क्या है, इस दिन ऐसा योग बनता है कि जैसे आप नमक हल्दी ये सारी चीजें दान में दी जाती हैं, सब्जियां दान में दी जाती हैं, तो जो हमारी राशियां हैं, जो विपरीत राशियां हैं, वो भी हमारे ऊपर अनुकूल प्रभाव डालती हैं। इसको हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो हिंदू संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो इसको उत्सव के रूप में मनाती है। तो कोई पतंग उड़ाता है, कोई घूमने जाता है, मौसम बदलाव होता है, तो इस तरह की संस्कृति मिली जुली संस्कृत। और ऐसा नहीं है कि इस पर्व को हिंदू ही मनाते हैं, मुस्लिम भाई भी मिलकर के इस पर्व को आपस में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं।
थोड़ा पंजाब की तरफ चलते हैं, वहाँ पर लोहड़ी की तैयारी हो रही है। एक विशेष बात लोहड़ी त्योहार में अब पंजाब में देखने को मिल रही है, वहाँ पर अब बेटियों की लोहड़ी भी मनाई जाती है। लुधियाना निवासी देवेंद्र सिंह नागी लोहड़ी त्योहार और उसके महत्व पर बताते हैं।
जो लोहड़ी फेस्टिवल है, ये बेसिकली होता है कि जो जैसे कोई न्यूली रेड होता है, जिसके नई शादी हुई होती है, उसके उनके लिए वो मनाते हैं उसको। और जिनके यहाँ पे लड़का होता है तो उसकी लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती है, जिसके घर पे लड़का होता है। अब पंजाब में ये ट्रेंड शुरू हो गया कि अब हम धीयों की लोहड़ी मनाते हैं कि बेटियों की लोहड़ी भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफी हाई लेवल के ऊपर भी लड़कियों को भी सेम अधिकार, जैसे हम सेम जो होता है ना, आप समझ ही रहे हो कि वो हम उसको कर रहे हैं, एक लेवल पे लेके आ रहे हैं लड़कियों और लड़कों को। लड़कियों को ये ना समझे कि ये बोझ है या कुछ है, उनकी भी सेम ऐसे ही लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं। रात को आग जलाते हैं, उसमें रेवड़ी गच्चक भुग्गा तिल वो फेंकते हैं उसमें, फिर सेलिब्रेशन होती हैं, भंगड़े पाए जाते हैं, और पूरे पंजाब में इसका जो होता है लोहड़ी अच्छे से सेलिब्रेट होती है। और मॉर्निंग में लड़के जो होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं, पंजाब में बहुत ज्यादा इसका लोहड़ी का जो है ये मनाया जाता है। और उसके बाद आती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जो है वो हमारे रिलीजन में बहुत ज्यादा मायने रखती है, और उसमें क्या हुआ था कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी को छोड़ के चले गए थे अनंतपुर साहब के किले में 40 सिख, वो 40 सिख जो है मकर संक्रांति वाले दिन शहीद हुए थे मुक्सर में युद्ध करते करते, और वो धोखा दे के मतलब कि उनको पीट दिखा के चले गए थे गुरु गोबिंद सिंह जी को। फिर वो वहां पे लड़ाई लड़े और जो उन्होंने जो लिखा था कि हम आपको छोड़ के जा रहे हैं चिट्ठी जो थी, फिर वो जब शहीद हुए तो उन्होंने फिर वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको फिर माफ किया और वो जो चिट्ठी थी वहां पे पाड़ दी थी मुक्सर में। पंजाब का एक बहुत ऐतिहासिक नगर है मुक्सर, मुक्तसर। मकर संक्रांति वाले दिन फिर वो क्या होता है कि लोग स्नान करते हैं सरोवर में और अच्छी कामनाएं करते हैं, और जो लोहड़ी वाले दिन जो होता है एक दिन पहले लोहड़ी जो होती है उस दिन फिर रात को आग बालते हैं, आग लगाते हैं लकड़ियों को और उसमें तिल फेंकते हैं। आलस जो होता है दिलचर सड़ जाए उसमें जो होता है, जो आलस है वो आग में सड़ जाए, हम एक्टिव हो जाएं, ऐसे हम इसको मानते हैं। और इसका एक पहलू पूरे ना सब कॉन्टिनेंट में भी ये सेलिब्रेट होती है, हिमाचल में भी होती है, जम्मू में भी होती है, इवन जो पाकिस्तान वाला एरिया उसमें भी होती है, पंजाब का पाकिस्तान एरिया जो। इस दिन दुल्ला पट्टी ने गरीब लड़कियों की शादी की थी जब उस टाइम पे, जब अकबर के टाइम पे या कह लो कि मुगलों के टाइम पे ये लड़कियों को उठा के ले गए थे गुंडे या कह लो कि डाकू थे, तो दुल्ला पट्टी ने वो लड़कियां उनके कब्जे से छुड़ा के उनकी शादी की थी। तो ये लोहड़ी उनको डेडिकेट होती है दुल्ला पट्टी को। और क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं फिर ये मांगने जाते हैं, जैसे आप देखते हो ना त्योहार होता है हेलोवीन में, बच्चे जो फॉरेन के कैनेडा अमेरिका में इंग्लैंड में हेलोवीन मांगने जाते हैं घर घर पे, इसी तरह से जो पंजाब के बीच में क्या होता था कि बच्चे ग्रुप बना के, लड़कियां लड़के ग्रुप बना के घरों में लोहड़ी मांगने जाते थे कि हमें, हम आए हैं जी आपके दर पे हमें लोहड़ी दो, तो वो लोग फिर उनको रेवड़ी गच्चक पुग्गा देते थे, कुछ जो अमीर होते थे वो उनको पैसे दे देते थे, ऐसे एक हमारा एक त्योहार माना जाता है इसको कि हम मांगने जाते हैं इसको लोहड़ी मांग, चलो जी लोहड़ी मांगने जाना जी ग्रुप बना के। तो वो अब ये प्रथा तो अब बहुत कम हो गई है, रिवाइव नहीं है, जैसे बोली डाली जाती है सुंदर मुंदरी ये हो तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले की धी व्याई, मीन्स दुल्ला पट्टी वाला, पट्टी का था दुल्ला, दुल्ला पट्टी था पाकिस्तान के एरिया में था वो दुल्ला पट्टी, और वो गरीब लड़कियों की शादी करता था, तो उस दिन फिर ये जो लोहड़ी उसको डेडिकेट होती। तो मकर संक्रांति वाले दिन फिर हम माघी जो होती है वो माघी का मेला होता है मुक्सर में, उसको डेडिकेट होता है।
दक्षिण भारत में इस समय पोंगल की धूम है, ये त्योहार तो 5 दिन तक चलता है, इसमें पशुओं के लिए एक दिन विशेष तौर पर रहता है और उनके महत्व को दर्शाता है। दक्षिण भारत के रहने वाले के ए शाह जी पोंगल त्योहार के बारे में बताते हैं।
या पोंगल इज नॉर्मली ए फेस्टिवल कन्फाइंड टू द सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और डिविजन, ऑल द पीपल ऑफ तमिलनाडु आर सेलिब्रेटिंग पोंगल, सो इट इज लाइक ए नेशनल फेस्टिवल ऑफ तमिल पीपल and across the world, wherever Tamil people are there, whether it is in Malaysia or Canada or some parts of Europe or even in Sri Lanka, the northern parts of Sri Lanka like Jaffna, people are celebrating Pongal. And Pongal is by and large, it is a harvest festival, it is an agrarian festival, and it would be extended to 5 days. And 4 days, people are making sumptuous lunches at home, they are inviting people from outside, they are treating the guests with good food. There are several special Pongal delicacies in Tamil Nadu. And on the final day, on the 5th day of the Pongal, it is devoted to animals. So it is known in Tamil as Madu Pongal. Madu in Tamil Nadu means animals, especially the animals being grown at home, like cows or buffaloes. So the last day of the Pongal is devoted to the animals. That is the inclusiveness of Pongal, and that is why on the final day, the domestic animals, they would be bathed properly and turmeric would be applied on their heads, and they would be fed with a lot of food, very sumptuous meals, and also they would be provided with a special sugar cane sticks. Sugar cane sticks are an essential part of Pongal, and both people are relishing and the animals are also relishing. So the concept is all the people, whether the animals or the human beings, everybody must celebrate the harvest festival. So this is the harvest time in Tamil Nadu. and people are relishing the sugarcane sticks, and also they are preparing good food, and on the final day of the Pongal, they are celebrating it with the animal. So it is indicating the inclusiveness and the kind of equality existing in Tamil Nadu, irrespective of religion, irrespective of caste, irrespective of whatever the divisions between people. So, Pongal has a message of universal brotherhood. Pongal is an occasion to celebrate. And there are several particular Pongal delicacies, because Tamil Nadu is known for very good, authentic vegetarian and non-vegetarian food. Idli comes from Tamil Nadu, dosa comes from Tamil Nadu. So the people on the day of Pongal, they are making special delicacies. There are the special mutton curry or chicken curry that are confined to Tamil Nadu. And the people are wearing good food, good dress, and people are going outside for festival. But in the last 2 years, because of the lockdown, because of the corona induced lockdown, people have several issues. People are not able to celebrate it.
त्योहार हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है. इन्हीं विविधताओं भरे त्योहारों के कारण ही भारतीय संस्कृति अद्वितीय है. लखनऊ से फैसल फरीद.